Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dehina Dehino Rajan. Deha Deho Vijayate.
Deha Deho Vijayate.
Vijad Eva Yata Vijang.
Vijad Eva Yata Vijang.
Hiyarta Eva Shashwataha.
Hiyarta Eva Shashwataha.
Dehina Dehino Rajan.
Dehina Dehino Rajan.
Deha Deho Vijayate.
Deho Vijayate.
Bijad Eva Yata Bijang.
Bijad Eva Yata Bijang.
Deyarta Eva Shashwataha. Dehina Dehino Rajan.
Dehina Dehino Rajan.
Deha Deho Vijayate.
Deha Deho Vijayate.
Bijad Eva Yata Bijam.
Bijad Eva Yata Bijam.
Deyarta Eva Shashwataha. Translation. As from one seed another seed is generated, O King, so from one body, the body of the Father, through another body, the body of the Mother, a third body is generated, the body of a son. As the elements of the material body are eternal, the living entity who appears through these material elements is also eternal.
Anuvad. Hey Rajan, jis prakar ek bij se dusra bij utpan hota hai, usi prakar ek sharir dwara anya sharir se ek tisra sharir utpan hota hai. Jaise bhautik sharir ke tatva nitya hain, वैसे ही इन भौतिक तत्वों से प्रकट होने वाली जीवात्मा भी नित्य है।
Purport Sri Prabhupada, Sri Prabhupada ki jai. From Bhagavad Gita we understand that there are two energies, namely the superior energy and inferior energy. The inferior energy consists of the five gross and three subtle material elements. The living entity, who represents the superior energy, appears in different types of bodies through these elements by the manipulation or supervision of the material energy. Actually, both the material and spiritual energies, matter and spirit, exist eternally as potencies of the Supreme Personality of Godhead. The potent entity is the Supreme Person. Since the spiritual energy, the living being who is part and parcel of the Supreme Lord, desires to enjoy this material world, the Lord gives him a chance to accept different types of material bodies and enjoy or suffer in different material conditions. Factually, the spiritual energy, the living entity who desires to enjoy material things, is manipulated by the Supreme Lord. The so-called father and mother have nothing to do with the living entity. As a result of his own choice and karma, the living being takes different bodies through the agency of so-called fathers and mothers.
Tatparya. Bhagavad Gita se prakat hai ki shaktiyan do prakar ki hain, utkrisht para shakti tatha nikrisht apara shakti. Nikrisht shakti ke antargat 5 stool tatha 3 sukshma bhautik tattva aate hain. Jeevatma utkrisht shakti ka pratinitva करती है और इन्हीं तत्वों के द्वारा विभिन्न शरीरों में प्रकट होती है। वास्तव में भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियां पदार्थ तथा आत्मा नित्य रूप में श्री भगवान की शक्तियां हैं। शक्तिमय जीव परम पुरुष हैं। क्योंकि आध्यात्मिक शक्ति अर्थात जीव परमात्मा का अंश है और इस भौतिक जगत का भोग करना चाहता है, इसलिए ईश्वर उसे छूट देता है कि वह विभिन्न शरीर धारण करके विभिन्न अवस्थाओं में सुख या दुख का भोग करे। वास्तव में यह आध्यात्मिक शक्ति अर्थात जीवात्मा परमेश्वर की ही सृष्टि है, तथा कथित माता या पिता का इसमें कोई हाथ नहीं रहता। जीव अपनी रुचि तथा कर्म के अनुसार माता पिता के माध्यम से विभिन्न शरीर धारण करता है.
So in the Bhagavad Gita, Krishna gives this famous, the English word is dissertation. You know, dissertation means like academic paper in a university. Second chapter, what is Atma? Krishna gives his famous dissertation on this point.
Maharaj बता रहे हैं कि भगवद गीता में भगवान जो हैं आत्मा के विस्तार व्याख्या करते हैं दूसरे अध्याय में. भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जो हैं आत्मा के विषय में विस्तार जो है व्याख्या करते हैं दूसरे अध्याय में.
Everyone recite the famous shloka, please. Dehosmanyadehi komran jovanam jara tadadehantra prabdeh dirastatra namuyate. So this is very wonderful. This second chapter of Bhagavad Gita is most perfect. It's infallibly perfect description of Atma. Who we are.
So ये बहुत अद्भुत है ये आत्मा का ज्ञान जो भगवान देते हैं दूसरे अध्याय में जो कि पूर्ण रूप से परफेक्ट है सिद्ध है.
Still, सही है. Okay. In spite of being perfect and complete, at the same time, it is an outline of the truth of Atma.
हालांकि ये पूर्ण रूप से ये जो अध्याय है दूसरा अध्याय ये पूर्ण भी है और पूर्ण रूप से सही भी है उसके बावजूद भी ये सिर्फ एक आउटलाइन है सिर्फ एक भारी रूप से भगवान ने संक्षिप्त रूप में बताया है.
So here in the sixth canto, 15th chapter of the Srimad Bhagavatam, we see that Krishna has empowered devotees. There are, it is said, fleshing out. That means they are giving the postgraduate explanation that is giving greater detail. That is to say, you know the word embellishing? Embellishing? No. That means
decorating.
Adding on top of decorating the Bhagavad Gita.
तो महाराज बता रहे हैं कि इस छठे स्कंद के 15वें अध्याय में जो भगवान के द्वारा भक्त हैं जो जिनके ऊपर शक्ति का वेश है वो जो है इसकी व्याख्या और अच्छी तरह से कर रहे हैं आत्मा के विषय के ऊपर इस अध्याय में.
So by hearing from Narada Muni and Angira Muni here, we understand from this, please understand this, the principle of Sakshat Tadidven Asamasa Shastri. From this shloka, these shlokas from this chapter, we should understand that principle.
तो हमें इन श्लोकों से जो हम सुन रहे हैं नारद मुनि और अंगिरा ऋषि के द्वारा इन श्लोकों से हमें जो सिद्धांत है साक्षात हरि द्वन समस्त शास्त्र है इसको बहुत अच्छी तरीके से समझना चाहिए.
Throughout the entire Srimad Bhagavatam, we find Lord Rishabhdev, Prithu Maharaj, Lord Vishnu himself, and Narada in other pastimes, and so many other four Kumaras, everyone is preaching the same thing, same absolute truth. Hare Krishna, even a rat can benefit. Hare Bol.
So, महाराज बता रहे हैं कि पूरे भागवतम में हम देखते हैं चाहे वो ऋषभ देव हो चाहे वो पृथु महाराज हो चाहे वो कुमार हो चाहे स्वयं भगवान विष्णु हो वो इस सिद्धांत का व्याख्यान करते हैं.
The rat is coming to seek association with Vaishnavas.
तो वो चूहा जो है आप सबका संग लेने के लिए यहाँ पर है आया है.
Unfortunately, so many other jivas, they are not coming to take advantage of hearing Bhagavad Katha, but the rat is coming. This is very nice.
ऐसे बाहर बहुत दुर्भाग्यशाली जीव है जो कि जो है संग लेने नहीं आ रहे लेकिन एक चूहा लेने आ रहा है.
Who can understand the good fortune of a temple rat?
मंदिर के चूहे की जो जो मतलब जो फॉर्च्यून है किस्मत है भाग्य उसको कौन समझ सकता है.
All kinds of Krishna prasad they're eating.
So वो कृष्ण प्रसाद खाता है.
Like the mice, I had at one point 7 mice in my room. 7 mice. Oh yes.
मैं बता रहा कि मेरे कमरे में सिर्फ 7 चूहे थे.
Well, here we are studying about how jiva multiplies in relationship of father, mother, jivas and all different kinds. 8,400,000. So this chapter is describing this. So in my own room, starting with 2 mice, You know, male, female.
बता रहे मेरे कमरे में दो चूहे थे, एक पुरुष थे और एक मादा थी.
Then two mice become seven mice.
तो जो जो है सात में बन गए, दो चूहे जो है वो सात चूहे बन गए.
Jiva is expanding.
जीवा जो अब इस तरीके से विस्तार करता है.
But actually these mice are very fortunate because they eat only Krishna Prasadam. That's it. Their diet consists of 100% Krishna Prasad.
ये चूहे जो है बहुत ही सौभाग्यशाली हैं क्योंकि ये सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही लेते हैं.
Even initiated devotees, we know, sometimes may be going to restaurants and then they have to eat food cooked by non-devotee in-laws and all these things, you know. But the mice are eating only Krishna Prasad. Not bad, eh?
तो कभी कभी हम देखते हैं कि दीक्षित भक्त भी जो है कभी कभी उनको रेस्टोरेंट जाना पड़ता है और अभक्तों द्वारा भोजन स्वीकार करना पड़ता है, लेकिन ये चूहे सिर्फ कृष्ण प्रसाद ही स्वीकार करते हैं.
Actually, there was electric wire going down to the floor and then going up to my altar.
एक बिजली की तार थी जो कि जमीन से महाराज के ऑल्टर तक जा रही.
So that became first class flyover for the mice.
ये बहुत ही अच्छा फ्लाईओवर बन गया चूहों के लिए.
So they always knew exactly 8 o'clock when the offering was going to take place.
तो वो जानते थे कि किस समय जो है वो भगवान को भोग अर्पित होगा.
So they go and they would go and they would I'd watch as the little mouse goes toink, you know, and takes a sip out of the cup of maha milk, you know.
तो महाराज कह रहे हैं कि मैं चूहों को देखता था कि कैसे वो जो दूध का बर्तन से दूध पीते थे टॉइंग करके.
And they hover, you know, but they're not so big on halva. But what really gets mice, if you want to know, is puris.
So Maharaj is telling us that chuhon ko puri bahut pasand hai.
They can't withstand the temptation of puris.
Wo jo hai wo puri jo hai wo.
With my patented technology, I have got one bucket with flower garlands and pieces of puri and a ramp that the mouse can go up. So now with my patented technology, the mouse goes in to the bucket, falls down, and then I throw a gumshoe over the top, and I've deported 5 mice this way.
So Maharaj is telling me that to catch them is a very easy technique. I have a bucket, and there are many flowers in it, and in it I keep a lot of flowers. And I keep a piece of wood like this, like a chuha climbs on it to eat the flowers. The wood falls, and it falls inside the bucket. And then I keep a gumshoe over the top of the bucket.
The sweeper who takes him down the street, he says, I don't know how Maharaj does it. I have to bring him to the house. I've got too many mice in my house. Maybe Maharaj can come and catch the mice in my house also.
यहाँ पर जो सफाई करते हैं वो बहुत हैरान हुए कि महाराज ने इतने सारे चूहे पकड़ लिए. तो महाराज के पास आए, महाराज अगर आप हमारे घर भी आ सके, वहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं.
The principle is that these mice have never done anything sinful, you see. Animals are not held responsible for sinful reaction.
Maharaj bata rahe hain ki isse ye pradarshit hota hai ki chuhe jo hain wo unhone paap nahi kiya, paap rahit the.
So they'll come to the human form of life as devotees without fail because they have had steady diet of mahaprasadam.
Kyunki wo mahaprasad grahan karte hain to agle jeevan mein unko jo hai पुरुष का मनुष्य का जो है शरीर.
Not only that though, because after a while Kavi decided to spoil their flyover, so he moved the wire in such a way they couldn't go on the altar anymore, because they're coming on the altar and right off the deities, they're circumnavigating the deities. Just see how they're circumnavigating the deities, and they get 100% benefit for that as much as human being. So a mouse is circumnavigating the deity but getting 100% benefit. Try to understand.
महाराज बता रहे हैं कि महाराज के जो सेवक हैं कविशेष प्रभु, तो उन्होंने जो है जो सेतु बना था ऑल्टर तक वो हटा दिया, तो अब चूहे जा नहीं पाते. लेकिन चूहे जब जाते थे तो महाराज बता रहे हैं वो परिक्रमा भी लगाते थे जो महाराज के विग्रह हैं.
Then as I would watch the show, I was sitting at my table and I'd watch the show because they always show up right on time for prasadam, you know, always on time. Everybody else may be late, but they come on time for prasadam.
मैं बता रही हूँ, जब मैं प्रसाद ग्रहण करता था तो मैं चूहों को देखता था और ये हमेशा बिल्कुल सही टाइम पे प्रसाद लेने आते थे.
You can see the garlands, they like the marigolds, is a gourmet item, you know, gourmet, highly tasty item, choice item for a mouse is marigold petals, so they would come on until until Kavi spoiled their flyover, they used to come onto the altar and they're eating. I'd see the garlands bouncing as they're eating it right off the deity, you know.
So, Maharaj is telling that chuhon ko jo hai ye gende ka phool bahut acha lagta hai. So, jab wo altar pe chadte the to gende phool bhi khate the. So, Maharaj dekhte the ki kaise wo gende ki jo mala wo hilti thi, jisse pata chalta tha ki chuhe jo hai gende ki mala kha rahe hain.
Then coming down and touching the lotus feet of the deities also. More fortunate than all the inhabitants of the city of Delhi is these mice. That's a fact. They're going to hell and the mice are going to become high class devotees. So who is more fortunate?
So is tarike se maa bata rahe hain ki wo vigrahon ke charan ko bhi chhua karte the aur is tarike se wo Delhi ke jitne bhi anya log hain unse kahin guna zyada subhagyashali.
But as the subject matter of this chapter, Srimad Bhagavatam, the inconceivable wanderings of the living entities within the womb of material nature. Inconceivable. Sometimes up, sometimes down.
जो बाकी अन्य जीव हैं उनको जो है अलग अलग योनि प्राप्त करनी पड़ती कभी ऊपर कभी नीचे के लोकों में.
As one seed is generated from another seed.
जिस तरीके से एक बीज दूसरे बीज से उत्पन्न होता है.
So generally the seed for living entities is the father is giving some kind of semen and then living entity is growing within the womb of some kind of mother. So conception of seed is there.
So ये बीज के रूप में है जिस प्रकार एक बच्चा पैदा होता है एक पुरुष के वीर्य से और माता के गर्भ में जब इस मिलन से जो है एक बच्चा पैदा होता है जैसे एक बीज जो है उत्पन्न होता है.
So bijat means from one seed, from a seed, bija.
Bija matlab seed, beech.
And bija means another seed. So from one seed another seed is coming. In other words, another living entity is coming from some other living entity.
So matlab do beech se ek aur beech utpann hota hai, jaise yahan par Bhagavatam ke shlok mein likha hai. To usi tarike se jo hum dekhte hain ki do jeev atmaon se jo hai teesra jeev atma jo hai wo utpann hota hai.
But Narada Muni is stressing that this is just like a kaleidoscope. You know what is a kaleidoscope? Do you know kaleidoscope? No?
Net.
You look through the tube and then you turn the end of it and the colors are changing constantly. Combinations never quite the same. One colored piece is touching another piece and it's always changing.
तो जैसे हम देखते हैं कि अगर हम बाजारों में जाएं तो एक बहुत बड़ा सा बक्सा होता है खिलौना होता है जिसके अंदर अगर हम देखते हैं तो अलग अलग दृश्य हमें दिखाई देते हैं. उसको हमारे बता रहे हैं क्लेडोस्कोप होता है उसको घूमता है उसको घुमाते हैं उसके कहिए को और उसके उस बक्से के अंदर देखते हैं तो अलग अलग चित्र जो है वो घूमते हुए दिखाई देते हैं.
So Narada and Angir are pointing out, so these relationships are changing like that, constantly changing, and previously they were saying like the sand, grains of sand. If you go to the beach, you see how the grains of sand are pushed by the water, sometimes touching some sand, some particles, and then moved again by the water and touching other particles, completely separate and leaving behind the previous particles.
So, Maharaj is telling us that, like we see on the sea, that the water of the sea touches some of the grains of sand, and some of the grains of sand don't touch.
So these relationships, however, are taken as all in all.
So the rishte hain jo hum log jo bhautik sharir ke rishte hain ye aise badalte hain aur hum in rishton ko jo hai poorn mante hain.
But they're just constantly changing. Another example used in shastra is pieces of straw in the water.
लेकिन ये रिश्ते जो हैं वो बदलते रहते हैं जैसे हम लोग एक और उदाहरण से समझ सकते हैं जैसे समुद्र में जो घास के टिनके होते हैं कभी मिलते हैं कभी बिछड़ते हैं उस तरीके से ये शरीर के रिश्ते भी मिलते और बिछड़ते हैं.
Especially up in the countryside, let's say if you were up in the Himalayas and you look at a creek, you know, creek, small river.
तो ये हमें दृश्य तब दिखाई देता है जब हम पर्वत में जाते हैं कहीं और वहां पर जो नदी होती है पर्वत के बीचों बीच वहां ऐसा दृश्य बहुत ही साधारण रूप से हम देख सकते हैं.
Some little sticks and some straw and some leaves, they are coming around. Sometimes they're picked by the water, they're moved and they run into another bunch of debris, you know, debris, different kinds of things are running, and then they stay for some time, maybe minutes or hours, and then again they're caught by the water and moving on to some other situation and contact some other straw. This example is given in Shastra.
शास्त्रों में उदाहरण दिया जाता है जिस प्रकार हम नदी में देखते हैं कभी घास के कुछ तनके या फिर पत्ते जो हैं पानी की जोर से जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं किसी धूल के साथ कुछ दिन कुछ देर इकट्ठे रहते हैं कुछ घंटे इकट्ठे रहते हैं और थोड़ी देर बाद पानी के ही दबाव से जोर से जो है वो अलग हो जाते हैं
सो द होल थीम ऑफ दिस चैप्टर इज दैट दीस रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन बॉडी आर टेंपरेरी सो इट्स एन एक्सपेंशन ऑफ सेकंड चैप्टर भगवद गीता दीस बॉडीली रिलेशनशिप्स दे आर सिंपली टेंपरेरी
तो ये पूरा जो अध्याय है ये हमें ये चीज समझाने के लिए है कि जो शारीरिक रिश्ते हैं वो अनित्य हैं नित्य नहीं है कभी बनते हैं कभी छूटते हैं जो कि भगवद्गीता के दूसरे अध्याय में दिया गया है
नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज मेड इन दिस श्लोक इज दैट द एलिमेंट्स ऑफ द मटेरियल बॉडी आर इटर्नल
और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो कि श्लोक में और बताई गई है इसके अलावा वो ये है कि जो भौतिक तत्व हैं वो नित्य होते हैं
जनरली वी रेफर टू द टेम्पररी मटेरियल एनर्जी
जब भी हम लोग बात करते हैं हम ये कहते हैं जो भौतिक शक्ति है वो अनित्य है
बट हियर वी सी दैट नारद मुनि इज रेफरिंग टू द मटेरियल एलिमेंट्स एज इटर्नल
और यहाँ पर नारद मुनि हमें ये समझाते हैं कि जो भौतिक तत्व हैं एलिमेंट्स हैं वो नित्य हैं अनित्य नहीं है
इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन द श्रीमद् भागवतम एल्सवेयर इन द भागवतम द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन दिस फेनोमेना इज यू नो फेनोमेना नो यस नो दिस फेनोमेना इज डिस्क्राइब्ड हाउ इज इट दैट द टेंपरेरी मटेरियल एनर्जी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज इटर्नल
तो ये एक जो सिद्धांत है वो भागवतम के अलग अलग जगह में भी समझाया गया है कि कैसे जो भौतिक शक्ति है वो नित्य है
Who knows the answer?
कौन जानता है कहां गया हुआ है भागवतम में
Yes, loudly. Loud. Yes, manifest. So the material energy is lying dormant within the body of the Supreme Lord. In this case, we understand the Lord has many expansions, but Mahavishnu. Within the body of Mahavishnu, the energy winds up and goes into his body.
तो प्रभु जी बता रहे हैं कि मैंने मैत्रेय मुनि और विदुर जी के संवाद में पढ़ा था जब मैत्र मुनि बताते हैं विदुर को कि किस प्रकार जो भौतिक शक्ति है वो भगवान विष्णु के शरीर में सुप्त अवस्था में रहती है और जब भगवान इच्छा करते हैं तो सृष्टि शुरू रचना शुरू हो जाती है तो महाराज बता रहे हैं ये ठीक है कि कैसे भौतिक शक्ति जो है वो विष्णु के शरीर में समा जाती है जब संहार होता है तो
आई यूज द एग्जाम्पल ऑफ ब्लोइंग बबल गम
मैं उसी तरीके से मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ बबल गम का जो फूल रहा है
When you were younger, Rumiki Nirsha, did you ever blow bubble gum when you were younger?
तो महाराज पूछ रहे हैं प्रभु जी से कि क्या आपने बबल गम कभी फुलाया है?
I don't know. I haven't seen much bubble gum in India, but in America, bubble gum is very, very popular.
तो महाराज बताने कि मैंने हिंदुस्तान में इतना बबल गम नहीं देखा, लेकिन अमेरिका में बहुत ही प्रसिद्ध है.
So with kids, even some adults blow bubble gum, but mostly. Kids, you know, they love bubble gum.
तो बच्चे हो या बड़े हो सबको बबल गम बहुत पसंद है वहाँ पर.
It comes in a little package, usually about 1 inch long. Then it's a block. It's a hard block.
और मान बता रहे हैं कि एक छोटे से पैकेज में जो है एक सख्त रूप में जो है बबल गम आती है.
So you could say that that is the apricot form of the bubble. It's in a block. It's not manifest. It's in a package. It's not manifest.
मैं बता रहे हैं जैसे बबल गम जब पैक्ड होती है तो वो जो बबल फूलता है उसका अप्रकट रूप है
प्रकट
नहीं हुआ उससे
packaging of the bubble gum can be crudely compared to the body of Mahavishnu.
और जो packaging होती है उस bubble gum की, वो हम लोग तुलना कर सकते हैं महाविष्णु जी के शरीर से.
The chunk, the scientists they were saying there was a chunk and the chunk exploded. There was a chunk and the chunk exploded.
जो वैज्ञानिक है वो कहते हैं सृष्टि की रचना कैसी हुई कि बहुत से एक मास इकट्ठा हुआ था जो जिसमें विस्फोट हुआ और पूरी सृष्टि की रचना हो गई. आधुनिक वैज्ञानिक इस चीज को बताते हैं सृष्टि ऐसी रची गई.
चंक इज लाइक द मटेरियल एनर्जी लाइक द अनमैनिफेस्ट चंक ऑफ बबल गम एंड गोज इनटू द माउथ ऑफ द चाइल्ड.
तो जिस प्रकार से वैज्ञानिक समझाते हैं वो जो मास था वो अप्रकट रूप था सृष्टि का. जिस प्रकार से जो बबल फूलता है उसका अप्रकट रूप होता है वो बबल गम जो कि व्यक्ति चबाता है.
So then it's churned by the movement of the mouth of the child.
So वो जो बबल गम है वो चबाया जाता है बच्चे के मुंह में.
After some time, after becomes pliable, soft, becomes soft.
जब थोड़ी देर बाद चबाते चबाते जो नरम पड़ जाता है.
Then they blow the bubble at some point.
और वो जब फुलाते हैं तो बबल बड़े सुंदर से बबल निकलता है.
If you're really good at it, you can blow a bubble that is like 8-inch diameter.
और अगर आप फुलाने में दक्ष हो तो 8 इंच तक जो है बबल फुला सकते हैं.
So from apricot it becomes pricot.
So अप्रकट से जो है वो बबल प्रकट हो जाता है.
But the elements are the same, is it not? The element is the same. The elements in the chunk, unamassed apricot chunk in the mouth of the child, the element is the same. All chemical ingredients, everything same. But it is up, the bubble is apricot. Then the child, as the doer, blows and the bubble comes out, you see.
जिस प्रकार में तत्व वही रहते हैं जो अप्रकट रूप में बबल था, बबल गम था, उसमें जो तत्व है वही बबल के रूप में बाहर निकल के आते हैं.
Similarly, the universes are coming out of the body of Mahavishnu. They are composed of material energy. There's no doubt about it.
उसी प्रकार जो महाविष्णु के शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं वही उन्हीं तत्वों के बने हैं.
But the point is that these energies are sometimes prakat or manifest and sometimes aprakat. So the word temporary is applied because it's sometimes prakat and sometimes aprakat. That is why the word temporary is applied. In the Bhagavad Gita, Krishna says these temporary material energies of mine, you see. There he doesn't say exactly eternal energy, but here the sages are explaining eternal energy. It's a higher conception.
महाराज समझा रहे हैं कि जो ये भौतिक तत्व हैं, क्योंकि कभी प्रकट रूप में हमें दिखाई देते हैं कभी अप्रकट होते हैं इसलिए हम उनको अनित्य कहते हैं. लेकिन यहाँ पर नारद मुनि समझा रहे हैं वो तत्व नित्य हैं लेकिन कभी वो प्रकट रूप में होते हैं कभी अप्रकट रूप में.
So the point is that the energy is winding into the body of Mahavishnu and it sits there dormant but it has not become destroyed.
तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि जो भौतिक तत्व हैं वो नष्ट नहीं होते, वो महाविष्णु के शरीर में सुप्त अवस्था में रहते हैं.
Another crude example could be an artist that works in moist clay.
तो एक और उदाहरण से हम समझ सकते हैं जैसे एक कुमार जो है वो मिट्टी के साथ, गीली मिट्टी के साथ जो है वो बनाता है, मटके बनाता है.
A chunk of moist clay is sitting there, you could say that's like apricot. It's unmanifest. You only see a chunk of clay, you don't see the form.
तो मटके बनाने से पहले जिस गीली मिट्टी से बनाता है वो गीली मिट्टी को हम अप्रकट रूप कह सकते हैं.
Then the artist skillfully manipulates the lump of clay and form appears.
और वो जो कुमार है वो बड़ी दक्षता से उस गीली मिट्टी से अलग अलग रूप के मटके इत्यादि बनाता है.
From a rather ugly lump of clay, a beautiful goddess could appear, a beautiful woman, a beautiful man, a deity. So many things can appear just out of a lump of clay by the manipulation of the hands of the artist.
तो उस कुमार की दक्षता से वो जो एक एक बदसूरत सा गीली की मिट्टी होती है उससे बड़े सुंदर सुंदर वस्तुएं बन सकते हैं, भगवान के विग्रह बन सकते हैं, सुंदर पुरुष या सुंदर स्त्री बन सकते हैं.
So similarly, the material energy is manipulated by the Supreme Personality of Godhead. You could say, by the will of the doer, it is comparable to the hands of the artist, you see. The real actual doer is the artist. Similarly, the actual doer is the Supreme Lord.
जिस प्रकार से कुमार की दक्षता से वो अलग अलग रूप बनाता है, ये कुमार पर निर्भर करता है वो क्या रूप बनाता है, उसी प्रकार से भगवान की दक्षता से जो है भगवान इन भौतिक तत्वों से कुछ सृष्टि बनाती है.
Therefore, the energy is called eternal.
इसलिए ये शक्तियां जो है उनको नित्य कहा गया है.
Because ultimately it doesn't become destroyed. It simply goes back into the body of Mahavishnu and it remains dormant.
और ये जो भौतिक शक्तियां हैं ये नष्ट नहीं होती, ये सिर्फ महाविष्णु के शरीर में सुप्त अवस्था में चली जाती है.
इज हिज ओन एनर्जी
और ये भगवान की स्वयं शक्तियां हैं.
सो इट डजंट सिट देयर लाइक अ लंप ऑफ कैंसर और समथिंग, यू नो, इट मर्जेस बैक इनटू द वर्ड मर्जेस देयर, इट मर्जेस बैक इनटू हिज बॉडी. इट इज वन विद हिज बॉडी, इट्स पार्ट ऑफ हिज parashya shakti vipadaya shute, part of his unlimited energies is one with him.
और जब ये भौतिक तत्व भगवान के शरीर में जाती हैं तो ऐसा नहीं होता जैसे कैंसर का ट्यूमर होता है वैसे कहीं इकट्ठा हुई हैं. ये जो है पूरे शरीर में भगवान के जैसे समान फैल जाती हैं और भगवान के समान हो जाती हैं.
When Lord Shiva drank the ocean of poison that was produced by the churning of the ocean of milk, and then poison was produced and it was going to destroy, actually it was going to kill every living entity in the entire universe. It was so toxic.
Jab samundar manthan hua tha,
the first toxic waste dump was the poison produced by the churning of the ocean of milk.
To jab samundar manthan hua tha to usme se kafi zeher nikla tha, wo zeher kafi tha pure sanhar ke liye, lekin bhagwan shiv ne jo hai us zeher ko pee liya tha.
So the poison was so severe, it was threatening the entire universe, and every living entity in the universe was going to die.
और जहर इतना तेज था कि वो सभी जीवों को मार सकता था इस ब्रह्मांड में.
So as a service to all the jivas of the living entity and to carry out the will of the Lord, Lord Shiva volunteered to drink it.
तो सभी जीवों की सेवा के लिए और भगवान की मंजूरी को पूरा करने के लिए भगवान शिव ने जो है वो जहर को पी लिया.
सो ए मोर इन्फॉर्म्ड पिक्चर, इन अदर वर्ड्स, इफ द आर्टिस्ट इज मोर एजुकेटेड ऑन द एक्टिविटीज ऑफ लॉर्ड शिवा, देन यू विल सी इन एनी पेंटिंग ऑफ लॉर्ड शिवा दैट ही हैज अ ब्लू लंप ऑन हिज थ्रोट.
तो अगर कोई पेंटर अगर वो इस लीला को जानता हो तो जब वो अगर कोई पेंटिंग बनाता है तो वो शिव जी के गले को जो है जो कंठ जो है नीले रंग वर्ण का बनाता है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने इस कंठ में जो है वो जहर रखा था.
That blue lump is the ocean of poison that he drank.
और वो जो नीला कंठ में जो नीला जो वर्ण आता है वो जो है वो उस जहर का सूचक है कि उन्हें जहर पिया था.
Prabhupada gives this example.
प्रभुपाद जो है ये उदाहरण दिया करते थे.
स्पेशली हिप्पीज, दे लाइक टू स्मोक गांजा, यू नो.
तो ये हिप्पों को दिया करते थे जो कि गांजा पिया करते थे.
प्रभुपाद सेज यू कैन डू, नो प्रॉब्लम, यू कैन डू.
तो प्रभुपाद क्या करते थे, तुम ये गांजा पी सकते हो.
बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रिंक एन ओशन ऑफ पॉइजन.
हाँ, तुम ये गांजा तभी पी सकते हो, सबसे पहले तुम्हें जो जहर, अगर तुम जहर पी सकते हो तो फिर गांजा भी पी सकते हो.
Lord Shiva may also smoke ganja just for the fun of it.
तो वो ये उदाहरण देते हैं कि शिव जी गांजा पीते हैं तो हम भी गांजा पी सकते हैं. तो प्रभुपाद जी कहते थे कि हाँ तुम गांजा पी सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें समुद्र जितना जहर पीना पड़ेगा.
Boom boom Mahadev, they say sometimes.
Boom boom Mahadev.
Bengalis passing around the hashish. कभी-कभी boom boom Mahadev, they think they are Lord Shiva.
कभी कभी जो है बंगाली जो है कहते हैं बम बम महादेव, बम बम भोले. महाराज बता रहे हैं बूम बूम महादेव.
फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रिंक एन ओशन ऑफ पॉइजन, दैट्स ऑल.
तो वो गांजा पीने से पहले तुम जहर समुंदर जितना जहर पी के दिखाओ.
क्वालिफाइड टू स्मोक गांजा इफ यू कैन डू दैट,
फिर तुम जो है गांजा पी सकते हो.
सो व्हाट हैपेंस, डज दैट सिमिलरली the material energy when it enters into the body of Mahavishnu, it's sitting there like a lump of cancer or something.
तो क्या आपको ऐसा लगता है जो भौतिक तत्व भवन के शरीर में मर्ज करते हैं, शरीर में मिलते हैं, वो एक कैंसर की ट्यूमर जगह एक जगह इकट्ठे रहते हैं?
What do you think, Prabhu?
आपको क्या लगता है?
No, it assimilates into his body. It's his own energy. It's not something foreign, you see. Not something foreign to him. Prashya Shakti Vividaya Shuyate. The Lord has varieties of energy. And in the Bhagavad Gita, he makes it crystal clear. He says, these are my energies.
तो भगवान जैसे बताते हैं कि ये मेरी शक्ति है, भौतिक शक्ति. तो ऐसा नहीं होता कि वो एक जगह इकट्ठे रहते हैं. वो भगवान के शरीर का अंग है, तो भगवान के शरीर में मिल जाते हैं.
So we have to understand from that point of view, then we understand that there's material energy is eternal, but sometimes prakat, sometimes aprakat.
So इससे सिद्धांत हमें समझ आ जाना चाहिए कि जो भौतिक तत्व हैं वो नित्य हैं, लेकिन कभी वो प्रकट होते हैं, कभी अप्रकट रूप में रहते हैं.
Another example could be a stage set.
और एक और उदाहरण है एक स्टेज का.
Sometimes there are very big, I don't know about India, but in the United States, sometimes there are very, very big stage productions that move from city to city. They start generally in New York City. They may go to big cities like Chicago, then they may go to Los Angeles, big cities, San Francisco. They may travel to the big cities with a whole production crew, big, big production crew.
तो कभी कभी हम लोग देखते हैं अमेरिका में कि वो एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर प्रदर्शन करने के लिए जो है ट्रैवल करते हैं, न्यूयॉर्क से शिकागो ऐसे.
So they've got this whole crew, then they may carry the stage sets with them, you see, when they're moving from one city to another.
और जब वो एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो अपना पूरा स्टेज का सामान जो है वो अपने साथ लेके जाते हैं.
Sometimes they're carrying their own electronic equipment to make sure that they have the equipment that they want at the stage that they arrive at. The stage may or may not be equipped up to their specifications. They're carrying truckloads of equipment also, you see.
So, वो अपने साथ साथ जो हैं क्योंकि एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और उनको ये पूरा निश्चय नहीं होता कि दूसरे शहर में भी उनको सारा सामान equipments मिलेंगे, तो अपने साथ साथ equipments भी carry करके जाते हैं.
So, supposing they were putting on their show with the actors and the costumes and everything in New York City.
समझ लीजिए अगर वो न्यूयॉर्क शहर में प्रदर्शन करने लगे.
After some time, they break it down.
और कुछ देर बाद जो है वो पहले पूरा एक स्टेज सेटअप करते हैं और थोड़ी देर बाद जो है उसको
At the end of the show, you'll hear the carpenter's hammers breaking the nails on the set and so forth, literally breaking it down into components. So they can put it into the trucks and take it to the next city, breaking it down.
तो पहले जो ट्रक में सामान आता है उसी से वो पूरा स्टेज बनाते हैं और फिर उसी को तोड़ के वापस ट्रक में डाल देते हैं और दूसरे शहर की तरफ आगे बढ़ते हैं.
So then the whole show goes from prakat. You had a beautiful stage set, everything was there. Special effects for moonlight, sunlight, trees, everything. Then they break it down with the carpenter's hammer. You see?
तो ऐसे स्टेज में वो बहुत ही अलग अलग चीजें बनाते हैं, कभी पेड़ लगाते हैं, चंद्रमा दिखाते हैं. और जब वो स्टेज खत्म हो जाता है वो सबको जो है वो निकाल के वापस ट्रक में डाल देते हैं.
From prakat it becomes aprakat.
तो पहले वो प्रकट रूप में होता है, फिर वो अप्रकट हो जाता है.
They pack it up. They wind it up.
उसको दोबारा पैक कर लेते हैं ट्रक में दूसरे शहर में जाने के लिए.
So this phrase winding it up, that's used. Winding it up means terminating, finishing.
इंग्लिश में एक शब्द है वाइंडिंग अप, जिसका मतलब वापस उसको खत्म करना.
Yes, so this term winding up is used in reference to the prakat form of the material energy. After some time, it's wound up into the body of the Lord. Like you, if you another example is, well, when people go fishing, you know, you've got the fishing line is on a wheel, you know, with a little handle, you know.
जैसे हम लोग देख सकते हैं जब कोई लोग मछली पकड़ने जाते हैं तो एक बड़ी सी रस्सी, बड़ी सी डंडी होती है, उसमें एक चक्री लगी होती है जिसमें रस्सी बंधी होती है जिससे वो मछली पकड़ते हैं. कभी रस्सी फेंकने के लिए वो चक्री को घुमाते हैं, वापस बंद करने के लिए भी चक्री को घुमा के जो है रस्सी को जो है वो बंद कर देते हैं.
And the fisherman, he casts it, and it has a weight on the end of it so that it goes flying in the sky and goes into the water.
He casts it and the reel unwinds and it goes into the water with because they put a lead weight on there, and so it will sink down, so the poor fish will be attracted.
जैसे मछुआरा जब पकड़ता है तो वो जो है वो रस्सी के आगे जो एक वजन बांधा होता है तो वो वजन को फेंकता है और जैसी रस्सी आगे बढ़ती है वो चक्की तेजी से घूमती है और रस्सी जो है उस वजन के साथ पानी में जो है अंदर जाता है जिसको मछली खाने का प्रयास करती है वो पकड़ी जाती है.
So when he becomes tired of this quote pastime unquote, it's demoniac of course, but when he becomes tired of this quote pastime unquote, he winds it up. He puts his hand on the little handle and he literally winds it up again, you see.
और जब वो इसमें जब थक जाता है तो वो क्या करता है कि चक्की घुमाता है और रस्सी को वापस खींचता है और जो है वो
this term winding up, that's used in the shastra, winding up. If you understand the principle, like the fisherman winds up the cord off the line, you see, that winding up.
जैसे वो जो मछुआरा जो है वो चक्री घुमा के रस्सी को वापस बांधता है उसी तरीके से भगवान जो है रस्सी को जो है वापस अपने अंदर.
When the Lord performs his pastimes in this material world, then the time comes, according to his sweet will, then he's going to go into apricot. He's going to wind up. So the same term winding up is used. That he winds up his pastimes, you see. So we can understand this is a very nice analogy, winding up.
So इस उदाहरण से हम समझ सकते हैं जैसे मछुआरा वापस रस्सी को बांधता है चक्री घुमाकर जब उसकी इच्छा होती है उसी प्रकार जब भगवान की इच्छा होती है सृष्टि को संहार करने की तो भगवान जो है सभी सृष्टि को अपने अंदर ले लेते हैं.
So therefore Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, going back to the example of a road show, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur is using the same example of show, like the road show, the example of show, display, presentation, like a stage, like a theater show. It is very comparable to this, try to understand.
So Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj इस सिद्धांत को समझाने के लिए भी ऐसी जो सड़कों में अलग अलग प्रदर्शन होते हैं कभी वो प्रदर्शन लगाते हैं और उसका जो है उसको निकाल देते हैं तो ये उदाहरण शिला भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज भी इस चीज को समझाने के लिए बताया करते थे.
So it is manifest in prakat form. The living entities are moving around under the direction of modes of material nature. So many costumes are there. Different 8,400,000 types of costumes are there. And the jivas are moving around and they're generating actions and reactions. All these things are going on, a whole show. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur uses this word show.
So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Maharaj samjhaya karte the jis prakar ek pradarshan mein kalakar aate hain jaate hain alag alag costume mein usi prakar yahan par alag alag jeev bhauti prakriti ke antargat jo hai wo karya karte hain ek sthan se dusri jagah bhagte hain daudte hain.
But he says that the whole show is only temporary.
और जिस प्रकार अब जो प्रदर्शन भार होता है वो अनित्य होता है थोड़ी देर में खत्म हो जाता है उस प्रकार ये सृष्टि जो है जो रची गई है ये भी थोड़ी देर में जो है खत्म होकर भगवान के शरीर में चली जाएगी.
Well, the conclusion is that the energy is eternal as stated here, but the show is temporary. So that you have to, if you understand that point, then you can harmonize the what at first glance sounds like a contradiction, that the temporary material energy that Krishna refers to in the Bhagavad Gita.
निष्कर्ष में निकला कि जो जो तत्व है वो नित्य है लेकिन जिन उनके प्रकट रूप में जो प्रदर्शन होता है जो सृष्टि होती है वो अनित्य है.
It's clearly stated in this shloka by Narada as being eternal.
और श्लोक में ये चीज साफ साफ नारद मुनि बता रहे हैं.
So a person uneducated in the Krishna consciousness concept of the absolute truth, they will consider this to be completely and totally contradictory and become bewildered, you see. What Krishna says is temporary, his temporary energy, but here it describes the eternal. How do we harmonize this?
जो पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं है कृष्ण भावनावृत के सिद्धांत से तो उसको ये बहुत ही उसको एक भ्रमित सा हो जाएगा वो तो भ्रम सा लगेगा कि ये कैसे बता रहे हैं कि नित्य है भौतिक संसार.
The answer is that the energy is eternal, but the show is temporary. Then you understand perfectly, you see. The show is temporary, but the energy is eternal. Then it can be understood how these temporary and eternal of the same energy can be going on at the same time. You see?
तो इसका उत्तर ये है कि जो भौतिक शक्ति है वो नित्य रहती है वो हमेशा रहती है लेकिन इस भौतिक शक्ति से जो सृष्टि रची जाती है वो अनित्य है वो कभी प्रकट होती है कभी अप्रकट होती है
So we'll stop there. Anybody have any questions?
हम लोग यहीं पर विराम देते हैं किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं
Question machine is out of petrol. Question machine out of petrol.
तो क्वेश्चन की मशीन जो है प्रभु जी बता रहे
हैं The other question machine isn't here. There's at least two question machines amongst the yellow boys. All right, thank you very much. Jagadguru Srila Prabhupada ki jai, Giriraj Govardhan ki jai, Shri Krishna Balarama ki jai, Shri Radhe Kurumar ki jai, Jagannath Swami Baladev Sambhaja ki jai. Nitya Gaur Premanande Hari Hari Bolo.